हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक क्रमांक 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पाण्डुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। आप लोग शायद महाभारत के प्रसंग को जानते होंगे। द्रुपद और द्रोणाचार्य जब शिक्षा ले रहे थे तो उनके बीच में बहुत मैत्री थी। बाद में द्रुपद को धन की आवश्यकता पड़ी जब वो बड़े हो गए थे। तो द्रुपद क्षमा कीजिएगा, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और द्रुपद राजा के पुत्र थे। जब बाद में वो राजा बन गए द्रुपद और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन बहुत गरीब थे, तो उनके बेटे के पास दूध पीने के लिए भी उनको दूध पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो कुछ धन मांगने के लिए ये द्रुपद के पास गए कि मेरे मित्र हैं और मेरे कुछ मदद करेंगे। तो द्रोणाचार्य ने जब वहाँ पर गए तो द्रुपद ने इनकी पूरा तिरस्कार कर दिया और उन्हें बोला कि मित्रता तो सामान्य व्यक्तियों के बीच में होती है, तुमसे मैं मित्रता कैसे कर सकता हूँ। तो द्रोणाचार्य को बहुत अपमान लगा था। बाद में जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दिया था इस संबंध में कि युद्ध कला में, तो फिर उनसे दक्षिणा मांगी थी और दक्षिणा में उन्होंने बोला था कि द्रुपद को आप हराइए। तो जो कौरव थे वो हरा नहीं पाए थे, लेकिन पांडवों ने पांचों ने मिलकर के द्रुपद को हरा दिया था। तो वहां पे उसके बाद आधा आधा राज्य हो गया था। द्रोणाचार्य जी के पास आधा राज्य था और द्रुपद के पास आधा राज्य था, लेकिन द्रुपद कभी भी इस अपमान को भूल नहीं पाए थे। और इस कारण से बाद में उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था द्रौपदी और दूसरे थे ये दृष्टद्युम्न। यज्ञ से वो प्रकट हुए थे और उनका जन्म जो है वो द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए हुआ था। तो ये बात द्रोणाचार्य जी जानते थे। और द्रुपद कितने अद्भुत है ना, द्रुपद ने दृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य से ही युद्ध कौशल सीखने के लिए भेजा और द्रोणाचार्य जी जानते हुए कि ये मेरे मृत्यु का कारण है, उसको पूरे सच्चे दिल से युद्ध कौशल सिखाया। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं दुर्योधन, इस बात को इंगित कर रहे हैं कि देखिए आप पहले नहीं कह सकते, हाँ आप बहुत लिबरल माइंड यानी कि बहुत उदार हृदय वाले ब्राह्मण हैं और आपने आगे के बारे में सोचते हुए दृष्टद्युम्न को आपने सारा ज्ञान दिया था, लेकिन अब देखिए इसी दृष्टद्युम्न के कारण हम लोग कितनी बड़ी संकट में आ गए हैं। ये जो पांडव थे इनकी जो सुंदर सी व्यूह रचना की गई है इस दृष्टद्युम्न के द्वारा ही की गई है, और सिखाया किसने है, आपने। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो अपने आचार्य का उपहास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आप बुद्धिमान नहीं हैं और आपने अपने ही शत्रु को पोस करके कितनी बड़ी गलती कर दी, ये जो है राजनीति के अनुसार सही नहीं था। इस प्रकार से अपने आचार्य की गलती को दिखाना ये कतई उचित नहीं है। गलती तो नहीं कही जा सकती, उसको गलती लग रहा था क्योंकि द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण के धर्म का पालन कर रहे थे। यजन याजन पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना ये एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। मृत्यु और मृत्यु के सत्य को तो वो पहले से जानते हैं, तो धर्म का आचरण कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन की नज़र में क्योंकि उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रही है अब, तो ये बातें सब उसको अच्छी नहीं लग रही। तो उन्हें बोला ठीक है, आप पहले तो उदारवादी थे, अब और अधिक इस संबंध में उदारवादिता मत प्रकट कीजिएगा। युद्ध में आप पूरे उत्साह के संग युद्ध करें ताकि ये लोग हम लोग उन पर जीत प्राप्त कर सकें। तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। वैसे मैं भी बता रहा था कितनी गलत बात है, गुरु में दोष देखना ये बहुत बड़ी बहुत खराब बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस जगत को हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और वो दृष्टिकोण गुणों के द्वारा प्रभावित होता है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है या शुद्ध सत्व में स्थित है वो जो कार्य कर रहा है वो इस जगत को सच्चे सही दृष्टिकोण से देख करके कार्य कर रहा है। तो जो तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं जनरली जब उन पर आक्षेप करते हैं कि ये लोग ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं ये गलत, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ रही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे दूसरे अध्याय में, और उन पर पूरा विश्वास है, अद्भुत है ना। और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य गुरु थे पहले से ही दुर्योधन के, लेकिन उनकी शक्ति के ऊपर या उनकी बुद्धि के ऊपर दुर्योधन को पूर्ण विश्वास नहीं था। यहां से दिख रहा है, कह रहे हैं कि आप अत्यंत बुद्धिमान, आपके जो शिष्य हैं दृष्टद्युम्न, ऐसे व्यक्ति को आपने ज्ञान दे दिया जिसकी वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो दोष बुद्धि कर रहे हैं अपने गुरु में, और यहीं से उनके पतन का कारण बन जाता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, जिसको मैंने अभी समझा दिया था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे कि द्रुपद को अर्जुन और भीम ने, और जो पांच पांडव हैं, उन्होंने युद्ध में हराया था, लेकिन उनके द्रोणाचार्य की आज्ञा से, लेकिन उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखी द्रुपद ने, बल्कि आप उनकी तरफ से वो उस उनके पक्ष से वो युद्ध भी कर रहे थे, लेकिन द्रुपद का जो क्रोध था वो द्रोणाचार्य के प्रति था। तो हमें समझ में आना चाहिए, जो क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे वो एक धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करते थे। ये आगे भी बात आएगी, भगवान गीता में बताएंगे कि जिस क्षत्रिय को युद्ध की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसके लिए स्वर्ग जाने का रास्ता है। तो यानी कि जो असली क्षत्रिय थे, जो सच्चे क्षत्रिय थे, वो केवल युद्ध करने में इच्छुक नहीं रहते थे, वो समाज प्रजा का पालन करने के इच्छुक रहते थे। लेकिन प्रजा के पालन में अगर उनको कुछ युद्ध करना पड़े तो फिर ये वो अपना सौभाग्य मानते थे, लेकिन वो जबरदस्ती युद्ध नहीं करते थे जैसा कि आजकल के जो राजा हैं या कह लीजिए शासक हैं करते हैं, झूठ मूठ के लिए युद्ध नहीं करते थे। कारण यही था, देखते थे राजा कि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भगवान के द्वारा दी गई है और इसका पालन होना चाहिए। तो अगर किसी दूसरे राज्य में इसका पालन नहीं हो रहा होता था तो फिर वो उस राज्य को जीतने के लिए युद्ध करते थे ताकि धर्म का स्थापना हो सके। तो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है ताकि वो धर्म की स्थापना कर सके। उसी प्रकार से गुरु और ब्राह्मण भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो धर्म की शिक्षा देते हैं और समाज में धर्म की स्थापना करते हैं। ये बहुत सुंदर बात मेरे हृदय में अभी आ रही है कि भगवान का उद्देश्य इस जगत में क्या है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। और राजा और ब्राह्मण को, दोनों को भगवान का प्रतिनिधि इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्राह्मण अपने वचनों से और अपने आचरण से, और राजा अपने वचन से और अपनी शक्ति से धर्म का स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। तो इसलिए इनको ये सबसे अधिक सम्माननीय है अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो इस झगड़े के कारण, इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। ये बहुत उदारता है, जैसे कि आप देखेंगे कर्ण के केस में भी, जब इंद्र उनके सामने एक ब्राह्मण बन करके आए और उनसे शक्ति, उनका उनसे जो उनका कवच था वो मांग लिया था, तो उन्होंने कोई उसमें झिझक नहीं करी, उन्हें उसको उनको दे दिया, कवच और कुंडल मांग लिए थे और उसके बदले में इंद्र ने उनको शक्ति दिया था, तो शक्ति रूपी एक अस्त्र दिया था। तो हम ये देख रहे हैं कि अपनी वचनबद्धता और ये उदारता, ये उस समय के समाज के लोगों में, स्पेशली ब्राह्मणों और क्षत्रियों में तो बहुत व्याप्त थी। अपने वचन की रक्षा करना वो परम धर्म मानते थे, और एक्चुअली सत्य बात है, कहा जाता है शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि पृथ्वी माता हर प्रकार के पापी को सहन कर सकती है लेकिन झूठ बोलने वाले को नहीं। तो आप देखेंगे कि झूठ बोलना में कोई खर्चा नहीं होता है और सत्य बोलने में भी कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन भगवान इस बात को आगे गीता में समझाएंगे, सत्य बोलना जो दूसरे को अप्रिय ना लगे ये वाणी की तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब दृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना करी थी। तो जो समझ में आ रहा है इसमें कुछ समझाना नहीं है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध से सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि दुर्योधन इस समय भी अपने आचार्य अपने सेनापति पे ही संदेह कर रहा है। कितनी आश्चर्य की बात ना, द्रोणाचार्य उनके मुख्य योद्धा थे, उन्हीं के बल पे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बल पे ही उसने युद्ध किया, युद्ध करने के लिए प्रस्तावना किया था, प्रयास किया था, और फिर भी वो उन पे संदेह कर रहा है। सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने ही मृत्यु के कारण को पूरे युद्ध कौशल दे रहा है क्योंकि वो धर्म का पालन करना चाहते हैं, जो व्यक्ति उसका साथ दे रहे हैं ये जानते हुए कि वो अधर्म कर रहा है फिर भी साथ दे रहे हैं क्योंकि वो उनके द्वारा पोषित हुए थे, राज्य के द्वारा पोषित हुए थे, यानी कि अपने धर्म को करने में इतने परायण हैं, धर्म परायण है, कर्तव्य परायण ऐसे कहना चाहिए, तो वह व्यक्ति क्यों धोखेबाजी करेंगे दुर्योधन के साथ में। लेकिन ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति के ऊपर कि हृदय में ऐसी भावना रहती ही है, वो लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो जो व्यक्ति भौतिक रूप से आसक्त होता है उसके लिए लोगों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। क्यों, थोड़ा सा गहरा कारण है। जब हम भौतिक रूप से आसक्त होते हैं, भौतिक वस्तुओं में आसक्त होते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये वस्तु इतनी सुंदर है जो मेरे पास है, सभी लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब भी कोई मेरे पास आएगा और मुझसे कोई संबंध स्थापित करना चाहेगा तो मुझे लगेगा कि ये जरूर मुझसे ये वस्तु चाहते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि इंद्र जब देखते हैं कि कोई साधु तपस्या कर रहे हैं तो उसके पास वो अप्सराओं को भेज देते हैं और या फिर और प्रकार से उनको प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं। क्यों, वो साधु भले ही इंद्र बनने के लिए प्रयास न कर रहे हों लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि इंद्रपद कितना महान है और जरूर ये साधु मेरे पद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भौतिकतावादी जीवन में या फिर अपने जीवन में भी हम अधिक से अधिक इकट्ठा करेंगे तो ये भावना बढ़ती चली जाएगी। इसे कहते हैं इनसिक्योरिटी की भावना, कि लोग मेरी वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं और ईर्ष्या और द्वेष का माहौल बढ़ जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ब्राह्मण लोग अपने को गरीब रखते थे ताकि इस द्वेष की भावना से मुक्त रहें कि वस्तुएं मेरी हैं, लोग मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं और जो लोग मेरी वस्तुएं छीनना चाहते हैं वो मेरे दुश्मन हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखने को मिल रही हैं और आगे फिर क्या बोलेंगे हम उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।